अपने आयबों को देखने की आदत होना चाहिए। आयब जो है मरज है, बीमारी है। और आयब ऐसा बीमारी है जिसका ताल्लुक आखिरत से है। मरज ऐसी बीमारी होती है जिसका ताल्लुक दुनिया से होता है। मरज ऐसी बीमारी जिसका ताल्लुक इंसान के जिस्म से, आयब ऐसी बीमारी जिसका ताल्लुक इंसान की रूह से। तो आयब ऐसी मरज ऐसी बीमारी है जिसका ताल्लुक दुनिया से है कि अगर उस मरज को नहीं पहचाना गया और उसका इलाज नहीं कराया गया तो दुनियावी नुकसान होगा और उसकी हद मौत है कि जिस्म बर्बाद हो जाएगा, काबिल इंतफा नहीं रहेगा, तो रूह के ठहरने की जगह भी नहीं रहेगी। रूह का घर खाली हो जाएगा, रूह के लिए ठिकाना नहीं है इस दुनिया में। इस दुनिया में रूह बगैर ठिकाने के नहीं रह सकती, आवारा नहीं फिरती। अगर मुस्लिमों में ये तसव्वुर है, जाहिलों में भी है, मुसलमानों में, कि रूह आवारा फिरती है, रू आवारा नहीं पूरा करती। अगर उसको इस दुनिया में रहने के लिए जगह नहीं मिलती है तो वो चली जाती है। तो मर्ज का अगर इलाज नहीं हुआ तो जिस्म बर्बाद हो जाता है और जिस्म की बर्बादी से मौत वाक़ हो जाती है और रूह को दुनिया में ठिकाना नहीं रहता। लेकिन आयब का इजाला नहीं हुआ और आयब की इसलाह नहीं हुई तो रूह बर्बाद हो जाती है और रूह बर्बाद होने से आखिरत बर्बाद होती है। तो आयब ऐसी बीमारी है जिसका ताल्लुक आखिरत से है और वो बहुत ज़्यादा नुकसान देने वाली है। तो दूसरों का ऐब जो है ये हमारी बीमारी नहीं होती, दूसरे की बीमारी है। दूसरे की बीमारी जो है काबिल तजलील और काबिल तहकीर नहीं होती बल्कि काबिल तरहम होती है, रहम के काबिल होती है, अगर आप रहम कर सकते हैं तो। अगर रहम नहीं कर सकते हैं तो तराहम भी नहीं करेंगे। तो जो अपना ऐब है वो काबिल तवज्जो है असल में, और तसव्वुफ़ की बुनियाद यही है। तसव्वुफ़ की बुनियाद में यही है कि अपने ऐब से आदमी को वाकिफियत हो और उसके इलाज की तदबीर में लगाओ। तसव्वुफ़ का मौजू तज़किया है और तज़किया जो है ना वो तायीब का ही अगेंस्ट मुकाबिल है, ज़िद है, ऐब का ज़िद, ऐब की ज़िद है। ऐब के माने नक्स के हैं और तज़किया के माने है कि इज़ाले नक्स के हैं। तो तज़किये में होता ही ऐब का इज़ाला है। तो नवाज का मौजू ये था कि हमें दूसरों के ऐब की तो फिक्र होती है, अपने एक ही नहीं होती, अपने ऐबों की नहीं होती। और हदीस शरीफ में ये मज़मून आया है कि तुमको अपने ऐबों का देखना दूसरों के ऐबों से गाफिल कर दे। अपने ऐब देखने की इतनी आदत हो आदमी को कि दूसरों के ऐब से उसको गाफिल कर दे, दूसरे का ऐब नज़र ना आए उसको। नज़र आने का मतलब झांक के देखने की नौबत ना आए। बाज़ ऐब वो होता है जो नज़र खुद ब खुद आता है बगैर झांक के देखे के, तो उसका तो कोई इलाज नहीं, वो तो आएगा, उसमें अहकाम मुतालिक होंगे। तो ऐब तो नज़र आ गया मगर करना क्या है। कहाँ ऐब नज़र आने के बावजूद आँख मोच लेना है, कहाँ पर का अलम तकुन तरा, गोया कि आपने देखा ही नहीं, ऐसा बन जाना है, अनजान हो जाना। कहाँ पे सत्तारी करनी है, छुपाना है, ऐप छुपाने के बड़े फजाए। जो दुनिया में किसी का ऐप छुपाएगा, अल्लाह आखिरत में उसका ऐप छुपा देगा। इससे बड़ी और क्या फजीलत चाहिए। कहाँ पे ऐप जाहिर करना है, किसी का ऐप इल्म में आ जाए तो जाहिर करना भी है। एक आदमी चोर है बल्कि मालूम हो गया, दूसरे आदमी के और जेब कतरा है, दूसरे आदमी के बाजू जाके बैठ गया है, उसके जेब के बाजू, आपको बताया कि जेब कतरा है। अगर आपने नहीं बताया उसको कि ये जेब कतरा है और उसका जेब कतर गया, तो गुनाह में ये भी बराबर का शरीक है जिसको पता है कि वो जेब कतरा है। दोनों 50-50 हैं, जैसे मनसूबा बंदी, तू 50 पैसे, मैं 50 पैसे। दुनिया में तो वो पूरे लेगा, इसको क्यों देगा सवाब। आखिरत में दोनों दोनों को भुगताना दादा है, तो बताना होता है बात जगह। ये पंगा पंगा कर रहा है, जब से उसको बोला अंदर पाँव बैठा के रखो, है उसको ले, उसको है ना अब्दुल कादिर है, उसे भेज, उसको ले जाए अंदर, उसको बोल पकड़ के बैठो, बोल अंदर उसको। ये जो फील्ड है, ये जो हिस्सा है इर्दुल मुस्लिम का, मुसलमान की इज्जत का, ये बिल्कुल इतना ओझल हो गया है निगाहों से। इसके अहकाम इतने ओझल हो गए हैं, इसके मुतालिकात इतने ओझल हो गए हैं कि लोगों के जहन में नहीं रही ये बात कि ये भी कोई शरीयत की बात है। मुसलमान की जान का हुक्म किस दर्जे में मालूम है, माल का हुक्म किस दर्जे में मालूम है, इज्जत का हुक्म नहीं मालूम बिल्कुल। किसी के बारे में कोई भी इंफॉर्मेशन आ जाती है व्हाट्सएप पे तो आगे बढ़ा देते हैं, इज्जत से मुतालिक तो है ही, कैसा नहीं है। अजीब बात यह है कि बाज़ मरतबा आपका आदमी है, आपकी बेइज्जती को आगे बढ़ा देता है, देखो अपने आदमी की कैसी बेइज्जती हो रही है। अरे आपके आदमी हैं, आपके आदमी की बेइज्जती करा, आप ही बढ़ा देते अपने दोस्तों को कि देखो हमारे आदमी की कैसी बेइज्जती हो रही है। उसको नहीं मालूम है कि ये बेइज्जती में कैसे हाथ ला हिस्सा ले रहा है, उसमें अहकाम ही जहन में नहीं रहे। अहकाम जहन में नहीं होने की अलामत यह है कि बिल्कुल वाकिफ नहीं है, ऐसा नहीं है, वाकिफियत तो रहती है। जैसे वो साहब जो ऐसी हरकत कर रहे हो, खुद उन्हीं की बेटी की कोई बात ऐसी आ जाए, इन्फॉर्मेशन आ जाए ऐसी, वो नहीं बढ़ाते आगे अपने दोस्तों में कि देखो मेरी बेटी की कैसी बेइज्जती हो रही है आप। क्यों नहीं भाई, ये मतलब बात मालूम है। इर्दुल मुस्लिम कहते हैं इसको, मुसलमान की इज्जत। न मुखालिफ की बेइज्जती जायज़ है इल्ला बशराइत, कुछ शराइत के साथ जायज़ है। इसला युहिब्बुल्लाहु अल-जहर बिस्सू मिन अल-क़ौल इल्ला मन ज़ुलिम, मज़लूम है तो उसको इजाज़त है। और मुआफ़िक़त के, मुआफ़िक़ के तो बदर्जे वाला जायज़ नहीं होती। और ऐब जो होता है, ऐब को ऐब गोई, ऐब जोई, फिर उसके बाद में गोई, जोई के माने जोइंदगी, जोइंदा माने तलाश करना, और गोई माने बयान करना, ऐब को जानने की कोशिश करना, तलाश करना, फिर उसके बाद उसको जाहिर करना, बयान करना। ये इर्दुल मुस्लिम से ताल्लुक है खास इसका। इर्द कहते हैं इज्जत को, अर्ज कहते हैं सामान को, इर्द कहते हैं इज्जत को। इसका इज्जत से ताल्लुक है। और जान और माल दोनों से ज्यादा बड़ा हक है इज्जत, क्योंकि इज्जत की खातिर जान भी कुर्बान की जाती है, माल भी कुर्बान किया जाता है। इज्जत बड़ी चीज शुमार होती है, इसलिए इस्लाम इस मामले में यूं कहता है कि दूसरों के ऐबों के पीछे मत पड़ो, अगर सामने भी आ जाए, इल्म में भी आ जाए, इंतज़ाम से उसका ताल्लुक ना हो। इल्म आया और आपका इंतज़ाम से ताल्लुक है, फिर आपकी ज़िम्मेदारी है। इंतज़ाम से ताल्लुक नहीं है तो आपकी ज़िम्मेदारी नहीं। इंतज़ाम से भी ताल्लुक ना हो, इसलाह से भी ताल्लुक ना हो, इसलाह से ताल्लुक है तो भी आपकी ज़िम्मेदारी है। या तो किसी ने आपको ज़िम्मे में दिया है कि मेरा कोई ऐब आपके इल्म में आए तो उसकी इसलाह करो आप, जैसे आमतौर पर पीरी मुरीदी में होता है, या ये कि फिर माँ बाप हैं, औलाद की बात आए इल्म में तो इसलाह करनी पड़ती है, बीवी है औलाद की बात आए, बीवी की बात आए शोहर के इल्म में तो इसलाह करनी पड़ती है, बीवी की बात आए तो इसलाह करनी पड़ती है, लेकिन बीवी की बात निकालने के पीछे पड़ने की इजाज़त उसकी भी नहीं होती। बाद लोगों को बीवी में झांकने की आदत होती है, क्या कर रही है, किससे बात कर रही है, किसका फ़ोन आया, किसका मेल आया, अरे भाई क्या तमाशा करते हो, ये वो ज़माना नहीं है। इस वक्त का दौर में ये चीज़ नहीं होती, ये मसले को ख़राब करने वाली बात है। इससे मसला ख़राब, यकीनन ख़राब होगा इससे मसला। आप शक करते हैं बल्कि मालूम हो आपकी बीवी को, तो सबसे पहला नुकसान ये है कि बीवी के दिल से मोहब्बत निकल जाती है शोहर की, ऐसे शोहर जब मोहब्बत निकलती है तो आज़मत निकल जाती है, एहतराम चला जाता है दिल से। मोहब्बत और आज़मत बाकी ना हो तो ज़िद आ जाती है, ज़िद आ जाती है तो अल इंसान हरीसुन फीमा मुनिया, आप जिस चीज़ पर उसको शक करते हैं उस चीज़ में जुरत बढ़ जाती है उसकी। ये एक सिलसिला है नुकसान का, वो बढ़ते ही जाता है मसला। आजकल के दौर बिल्कुल अलग है इस मामले में, एतमाद के अलावा कोई चारा नहीं। भरोसा करो या फिर आंखें बंद करो। हाँ, कोई चीज़ सामने आ जाए तो फिर जिम्मेदारी है, एक्शन लो, जो आज भी एक्शन हो सकता है। ऐब सामने आना अलग है, ऐब तलाश करना अलग है। ऐब तलाश करने की तो इजाज़त ही नहीं, और असल ये है कि अपने ऐब को देखने की आदत हो, और इतनी आदत हो कि वो दिखने लगे। बगैर आदत की ऐब दिखता नहीं अपना, बगैर आदत की अपना ऐब दिखता नहीं, बगैर कोशिश किए कि अपना ऐब दिखने की आदत नहीं होती, और इतनी ज़्यादा उसमें आदत हो कि वो दूसरों के ऐब का उसको मौका ना रहे, ये बहुत उसकी बात है, कमाल की बात है, ये बहुत मलके की बात होती है। अपने ऐब को देखने की आदत हो जाना, ये अदना से मलके में आ जाता है, मतलब थोड़ी सी कोशिश में आ जाती है चीज़, लेकिन दूसरे के देखने का मौका नहीं रहना, ये मेहनत चाहता है, आसान नहीं है काम। एक अजीब बात है, किताबों में जो लिखी हुई है, किताबों में जो लिखी हुई है वही सुना सकते हैं, अंदर तो कुछ है नहीं आप सुनाने। अपना ऐप देखते देखते जब आदमी को आदत हो जाती है ना, तो उसको सही करने की फिक्र में रहता है, वो तो सही कर लेता है बहुत हद तक, फिर भी दिखते रहती है लेकिन सही होता है। उसके बाद की खसूसियत ये है कि फिर दूसरे में ऐप दिखने के बजाय खूबी दिखती है। अल्लामा शारानी का मज़ मलफूज है ये, अल्लामा शारानी रहमतुल्लाह अलैह ने फरमाया है, उनकी किताब अद-दुरुरुल मंकूद, बड़ी अजीब किताब, हज़रत जलाल आबादी रहमतुल्लाह अलैह ने पूरी पढ़ के सुनाई थी मजलिस में, अद-दुरुरुल मंकूद, मुजद्दिद गुजरे हैं। उसमें यह है कि अगर आपको दूसरा आदमी अच्छा लगा, कोई अच्छा लगता है, तो ये उस आदमी के अच्छा होने की अलामत है जिस आदमी को दूसरा अच्छा लग रहा है। और अगर किसी आदमी को दूसरा आदमी बुरा लगता है तो ये उसके बुरा लगने की अलामत है, जो जिसको ये बुरा लग दूसरा बुरा लग रहा है। असल अपनी ही खूबी दूसरे में देखी जाती है, उनके बयान का खुलासा ये है, अपनी ही खूबी दूसरे में देखी जाती है और अपनी ही खराबी दूसरे में देखी जाती है। ये मजमून चल रहा था एक वाज में, फरमाते हैं एक जगह से कि नेक बात बतलाना हर वक्त ताअत है, खा अमल करे या ना करे। आप खुद ही अमल नहीं करते तो आप दूसरों को बोलते क्या हिसाब से, किस मुंह से बोलते बोलते ना, ये सही नहीं। सही ये है कि अमल करते हों या ना करते हों, बोलना है ताअत है। फिर उस पर गैरत दिलाना अलग बात है कि जब तू बोलता है तो करता क्यों नहीं, वो किया जा सकता है, उसका मुस्ताहिक है वो कि भाई जब तू दूसरे को बोल रहा है तो तू खुद क्यों नहीं करता, दूसरे को कहीं को बोल रहा करना बोल के बोल रहा ना, तो तेरे को नहीं है क्या करने का, ये वो सवाल उस पर रेज किया जाएगा। बाकिया ये है कि बताना, दीन की बात बताना, ये तो सबको करने का है, चाहे अमल करता हो चाहे ना करता हो। नेक बात का बतलाना हर वक्त ताअत है, चाहे अमल करे चाहे ना करे। यही वो गलती है जो कि इस आयत के गलत समझने की बदौलत उलमा को हुई, और उसका असर यह हुआ कि बाज़ ने बाज़ तलकीन को बिल्कुल ही तर्क कर दिया, बाज़ छोड़ दिया। क्यों? इस बात है कि वो कहते हैं कि हम खुद ही गुनहगार आदमी। अरे भाई तुम गुनहगार हो तो बाज़ नहीं करेंगे क्या? और जब उनसे सबब पूछा गया कि भाई क्यों तुमने छोड़ दिया, तो जवाब दिया कि कुरान शरीफ में इरशाद है, अता अमुरुन नास बिल बिर्रि वतनसौना अनफुसकुम वअंतुम तत्लूनल किताब। मुझे ये इसी आयत पर बात शुरू हुआ ना हजरत का, और इसके जवाब के बाद अपने को बिल्कुल बरी जिम्मा समझ लिया। मगर ये धोखा है, और सबब इस धोखे का यह है कि इन लोगों ने यह समझा कि कुरान का मकसूद ये है कि अगर खुद अमल ना करो तो दूसरों को भी नसीहत ना करो, हालांकि यह मुकदमा बिल्कुल गलत है, क्योंकि अमर बिलमारूफ ताअत है और उस ताअत की शराइत हैं। ये उस ताअत की शराइत में ये शर्त कहीं नहीं कि अगर खुद भी अमल करे तो ताअत होगी वरना नहीं होगी, ये नहीं है। हाँ, अपना अमल ना करना एक मुस्तकिल गुनाह है जो कि काबिल तर्क है, लेकिन अमर बिलमारूफ के साथ इसको शर्तियत वगैरह का कुछ ताल्लुक नहीं है। अमर बिलमारूफ के लिए शर्त है ऐसे की बात नहीं है, अमल ना करना गलती है, उसको छोड़ना चाहिए बल्कि अमल करना चाहिए। और ये किसी हदीस से या किसी मुज्तहिद के कौल से साबित नहीं कि अगर गुनाह से ना बचे तो दूसरी ताअत भी ताअत न होगी, और अगर इसको माना जाए तो फिर इस आयत के क्या माना होंगे, इंदल हसनात ही दीबन सयाद, क्योंकि इस आयत से मालूम होता है कि यह उसके बारे में है कि जो कि नेकी भी करता है लेकिन गुनाह में भी मुबतला है। तो अगर गुनाह करना दूसरी ताअत के ताअत न होने का सबब है तो इस कफारे सयाद की कोई सूरत ही न रहेगी, और मजमून आयत के बिल्कुल खिलाफ लाजिम आता है। अलबत्ता ऐसे गुनाह हैं कि जो दूसरी ताअतों को ताअत रहने नहीं देते, जैसे नमाज का तर्क करना, नमाज के तर्क करने से दूसरी ताअतों की ताअत बाकी नहीं रहती, उसका कोई सवाब नहीं मिलता। البتہ کسی ایسے گناہ کا مرتکب ہو جو کہ مفوت طاعت ہے تو بے شک پھر طاعت نہ رہے گی، اور ایسا نہ ہونے کی صورت میں طاعت اپنی حالت پر رہے گی، اگرچہ معصیت کرنے سے یعنی گناہ کرنے سے گناہ بھی ہوگا، ہاں اتنا اثر ضرور ہوگا کہ گناہ کی وجہ سے طاعت کی برکت کم ہو جائے گی، گناہ کی وجہ سے طاعت کی برکت کم ہو جائے گی۔ سو یہ ایک مستقل مسئلہ ہے جس کو انشاءاللہ تعالیٰ کسی دوسرے وقت مستقل طور پر بیان کروں گا۔ فرمایا کہ بہتر ہو اگر مجھے اس کے متعلق یاد دلایا جائے، کیونکہ بعض لوگوں کو اس مسئلے کے معلوم نہ ہونے کی وجہ سے گناہ کرنے میں بہت بے پرواہی ہو گئی ہے، اور یوں سمجھتے ہیں کہ گناہ کو طاعت کے عدم میں کچھ بھی علاقہ تعلق نہیں، طاعت نہ ہونے میں، حالانکہ عدم برکت کا تعلق ہے، برکت باقی نہیں رہتی تو یہ کیا کم تعلق ہوا، مگر اس وقت یہ بیان کرنا ہے کہ گناہ کرنے سے طاعت منہدم نہ ہو جائے گی، اور دلیل اس کی یہ آیت ہے ان الحسنات یذھبن السیئات، جب اس کی بنا الگ ہوئی تو یہ سمجھنا کہ اگر واز کہوں گا تو گنہگار ہوں گا، غلطی پر ہے، عمل نہیں کرنے کی وجہ سے واز کہوں گا تو گنہگار ہوں گا، غلطی پر مبنی ہے، بس امر بالمعروف طاعت ہوا اور اس کا طاعت ہونا گناہ نہ کرنے پر موقوف نہ ہوا، بلکہ آیت میں ملامت اس پر ہے کہ تم خود کیوں عمل نہیں کرتے، ملامت ہے، اور واز کے چھوڑ دینے سے تو دوسرا جرم قائم ہو گیا، یعنی نہ خود عمل کریں نہ باوجود معلوم ہونے کے دوسروں کو بولیں، یہ تو دو غلطیاں ہو جائیں گی، پھر یہ ہے علماء کی اس غلطی کا کشف۔ دوسرا مقدمہ یہ ہے کہ ان الحسنات یذھبن السیئات، تیسرا مقدمہ یہ ہے کہ جب ایک شخص امر بالمعروف کرتا ہے جو کہ طاعت ہے، اور طاعت مزیل ہوتی ہے معصیت کی، تو اس کا اقتدا یہ ہو سکتا تھا کہ یہ کفارہ ہو جاتا نسیان نفس یعنی ترک عمل کا، مگر اس طاعت کے ہوتے ہوئے بھی اس کا یہ نسیان بھولنا اپنے آپ کو اس امر بالمعروف سے ہوا، تو جہاں امر بالمعروف بھی نہ ہو نری بدعملی ہی ہو جس میں عیب جوئی بھی داخل ہے، تو وہ کیوں کر مجیب ملامت نہ ہوگی، ضرور ہوگی۔ خلاصہ یہ ہوا کہ اے شخص جو کہ اپنی حالت کو بھول رہا ہے، جبکہ تیری حالت ایک معصیت اور ایک طاعت کے مجموعے پر بھی محل ملامت ہے، تو جب طاعت ایک بھی نہ ہو بلکہ دونوں معصیت ہوں تو کیوں کر ملامت نہ ہوگی، کدھر سے کدھر لے لے گیا، اور دو معصیتیں اس طرح ہوئی کہ بدعملی تو اپنی حالت پر رہی جس کا تنسونا انفسکم میں فرمایا ہے، اور امر بالمعروف کے بجائے دوسرے کی عیب جوئی ہو گئی، تو اس حالت میں بدر جا تب ملامت ہونی چاہیے۔ بس معلوم ہوا کہ اس آیت میں جس میں ملامت کی بنا پر بدعملی و عیب جوئی ہے، علماء کو ہی خطاب نہیں بلکہ جہلا کو بھی ہے، یہاں سے چلے تھے کہ بعض اس میں جو غیر عالم ہیں وہ بھی مبتلا ہیں، تو وہ کس انداز میں مبتلا ہیں اس آیت پر عمل ہونے میں، اس آیت پر عمل چھوڑنے میں، اور جو علماء کرام مبتلا ہیں اس آیت پر عمل چھوڑنے میں، وہ کس طریقے سے مبتلا ہیں، دو الگ الگ جہتوں سے سمجھانا تھا ان کو۔ علماء کو ہی خطاب نہیں بلکہ جہلا کو بھی ہے، کیونکہ اس کا ارتکاب وہ بھی کرتے ہیں، بلکہ جہلا کو زیادہ سخت خطاب ہے اور علماء کو ہلکا، کیونکہ ان کے پاس ایک نیکی تو ہے، امر بالمعروف اتأمرون الناس بالبر، اور جہلا کے پاس تو ایک بھی نہیں۔ اب اس کو غور کیجیے اور جہل پر اپنے فخر کو دیکھیے، کہتے ہیں نا بعض لوگوں کو اس پر فخر ہوتا ہے کہ ہاں بھائی میں کو معلوم نہیں ہے، اگر معلوم ہوتا تو یہ ذمہ داری سر پہ پڑ جاتی، اور جہل پر اپنے فخر کو دیکھیے کہ اس کی بدولت تو تعزیرات الہیہ کی ایک دفعہ اور بڑھ گئی۔ مقصود اگر ایک آدمی کو اپنی نادانی پر فخر ہو تو فخر کرنا یہ اور ایک غلطی ہے، تو یہ تین ہو گئے بول رہے ہیں، یہ تو رنجیت سنگھ کی بحث ہو جا رہی ہے، ایک دو تین یاد ہے قصہ۔ مقصود اس سب سے یہ ہے کہ ہماری جو یہ عادت پڑ گئی ہے کہ ہم دوسروں کی عیب جوئی کیا کرتے ہیں، اس کو چھوڑ دینا چاہیے۔ خلاصہ یہ ہماری یہ عادت پڑ گئی ہے کہ ہم دوسروں کی عیب جوئی کیا کرتے ہیں، اس کو چھوڑ دینا چاہیے اور اپنی فکر میں لگنا چاہیے۔ साहिबो अपने जरायम क्या कुछ कम हैं कि हम दूसरों की फ़िक्र करें। और ये जो मैंने कहा था कि इस्लाह कौम के लिए तफ्तीश हालात जायज़ है, इससे पहले आई थी बात, उसके कुछ आदाब भी हैं, उनको मालूम कर लेना ज़रूरी है। सो एक अदब तो ये है कि इस्लाह किसी शख्स की मजमे आम में न की जाए, किसी का कोई आयब मालूम हो अब लोगों में सब में उसकी इस्लाह न की जाए, क्योंकि इससे दूसरे को शर्मिंदगी होती है और शर्मिंदगी का असर यह है कि नसीहत करने वाले से बोझ हो जाता है। शर्मिंदगी का असर यह है कि नसीहत करने वाले से बोझ हो जाता है। एक बात ज़हन में आई, ये शर्मिंदगी जो है इसके लिए ज़रूरी नहीं है कि कोई आम दूसरा मजमा हो, इसके लिए ये है कि घर का अगर घर के अगर अफराद कई हैं तो उनमें भी असर होता है। क्या मतलब इस बात का? इस बात का मतलब ये है कि ये शिकायत अब बहुत आने लगी है लड़कों और लड़कियों की वालिदैन की तरफ से, अपनी पेरेंट्स से, कि हमारी कोई बात अब उनको अच्छी नहीं लग रही, बुरा मानते हैं, बाप की बात बुरा मानती है औलाद, माँ की बात बुरा मानती है औलाद, शिकायत बहुत आ रही है। ज़ाती तौर पर जिनसे वाकिफियत होती है उनको तो ये कहा जाता है कि भाई आप नसीहत करना छोड़ दो, खामोश हो जाओ। लेकिन इस बात की रोशनी में एक बात समझ में आई, वो ये है कि जब आप भाइयों बहनों के सामने बार बार किसी को टोकोगे तो उसको शर्मिंदगी होगी उनके सामने, और ये शर्मिंदगी बुग्ज़ का सबब है, नासिह से बुग्ज़ का सबब होता है, जो नसीहत करने वाला है उससे बुग्ज़ हो जाता है। अब माँ बार बार बोलती है तो माँ से नफरत हो जाएगी, बाप बार बार बोलता है तो बाप से नफरत हो जाएगी, और जितना ज़्यादा नफरत होती है उतनी मुखालफत होती है, वो उतना ज़्यादा बोलता है, तो ये तक बढ़ती जाती है, कशाकश बढ़ती चली जाती है। और इतनी जुरत बढ़ जाती है बच्चों की मैंने देखा कि कोई जब केस आते हैं ऐसे सामने, लोग लेके आते हैं अपने औलाद को कि इनको कुछ समझाइए, तो हमने माँ बाप को गुस्सा कर, यानी औलाद को देखा है कि उन्होंने वो माँ बाप पे गुस्सा कर रहे हैं कि तुम अपना मुँह बंद रखो, तुम खामोश बैठो। किसके सामने? दूसरे थर्ड पार्टी के सामने, हमारे सामने मसला, ऐसे वाक़ात आते रहते हैं। ईगो का मसला जो है ना बहुत बड़ा हुआ है इस वक्त, छोटे छोटे बच्चों में बड़ा बड़ा ईगो है, तो बहुत ध्यान से करना पड़ता है इस बात को। सो एक अदब तो ये है कि इस्लाह किसी शख्स की मजमे आम में न की जाए, क्योंकि इससे दूसरे को शर्मिंदगी होती है और इस शर्मिंदगी का असर यह है कि नसीहत करने वाले से बोझ हो जाता है। बल्कि बाज़ औक़ात इस अम्र को तर्क करने के बजाय उसमें और ज़्यादा पुख्ता हो जाता है, क्योंकि ये समझता है कि मेरी रुसवाही तो हो ही गई, अब मैं क्यों छोड़ूँ। नसीहत करना इसलिए जो है बहुत नाजुक चीज़ होती है। अब करना क्या, उसके लिए बेहतर यह है कि या तो ख़ुद उसको खलवत में ले जाकर उससे कह दे, या अगर उससे न कह सके तो किसी ऐसे शख्स से कह दे जो कि उसकी इस्लाह कर सके, लेकिन उसके दुश्मन से न कहे, ये भी ख़ास बात है, उसके मुखालिफ से न कहे, क्योंकि दुश्मन से कहने में इस्लाह तो हो नहीं सकती, हाँ तजलील होगी, जलील होगा वो। दूसरा अदब यह है कि नरमी से कहे, तहकीर और तान के तौर पर न कहे, जिस चीज़ की इस्लाह करना है उसको उसमें तहकीर और ताना ना पाया जाए। तीसरा अदब यह है कि मजमे में आम खिताब से कहे तो ऐसे पते न दे कि आम में उसकी रसवाई हो। मजमे में जब बात अगर कहनी होती है किसी के बारे में तो आम खिताब होता है, लोगों का यह हाल है, लोग ऐसा करते हैं, उसमें भी बात होशियारी ये करते हैं कि वो मजमे में आम खिताब आम में ऐसे रम्ज और ऐसे इशारे मिला देते हैं कि सबके समझ में आता किसको बोल रहे हैं, वो मुराद है। मुझे ये अम्र बहुत पेश आता है, यानी ये फरमाइश की जाती है कि फला शख्स सूद लेता है, ज़रा आवाज़ में उसकी खबर लीजिए, या फला शख्स ने हुकूक दबा रखे हैं, ज़रा उसके मुतालिक फरमा दीजिए। दस पांच आदमी बैठे हुए हैं, उसमें कोई एक आदमी जो है कोई गलती में मुब्तला है, कोई गुनाह में मुब्तला है, अब उसके मुतालिक सवाल कर रहे हैं आलिम साहब से कि इसके बारे में आप क्या फरमाते हैं, तो क्या मतलब है, सवाल किधर जाएगा? लेकिन मैं बिहम्दिल्ला इन फरमाइशों पर कभी अमल नहीं करता, क्योंकि मैं जानता हूं कि यह तरीक़ इस्लाह बजाय मुफीद होने के मुज़िर है। सुनने वाले कराइन से समझ जाते हैं कि फ़लाँ शख्स को कहा जा रहा है और इससे मजमे आम में उसको शर्मिंदगी होती है, जिसका नतीजा बुग़्ज़ और अदावत है। और ऐसे आदमी कर पर अगर सवाल जवाब करा दिया गया और गफलत में उसने कर दिया तो ऐसे आदमी को देखा कि दूसरी मर्तबा फिर वो आता नहीं, वो छोड़ देता है, वो उसने अपने रास्ता बदल लिया, वो जगह उसी जगह चला गया, वहाँ जा देंगे तो जलील करेंगे, फिर कोई और मुझे जलील करेगा किसी और रास्ते से। तो कई मर्तबा जिसको नसीहत की जा सकती थी वो छूट जाता है। और इसके सबब अपने फेल की और ज़्यादा पछ हो जाती है। इसका बेहतर तरीक़ा यह है कि अगर वाकई इन लोगों की इसलाह करना मंजूर हो तो अव्वल उनसे मेल जोल पैदा किया जाए, जब खूब बेतकल्लुफ़ी हो जाए तो वक्तन फवक्तन नरमी से उनको समझाया जाए और ख़ुदा ताला से उनके लिए दुआ की जाए, और जो तदबीरें मुफीद साबित हों उनको अमल में लाया जाए, गर्ज वो बर्ताव किया जाए जो कि अपनी औलाद से किया जाता है। अगर उनकी शिकायत किसी दूसरे से की जाएगी तो अपने दोस्तों से की जाएगी जो कि उसकी इसलाह कर सकेंगे, या बुज़ुर्गों से की जाएगी कि वो उसके लिए दुआ करें। अलाहदा जिनसे दुरुस्ती की उम्मीद होगी उनसे कहा जाएगा, और जहां ये बात ना होगी वहां ज़ुबान पर भी अपनी औलाद के अयूब को न लाया जाएगा। ये मिसाल बिहम्दिल्ला ऐसी उम्दा है कि उसके पेश नज़र रखने के बाद इसलाह के तमाम आदाब मालूम हो जाएंगे। यानी जिस मुसलमान की इसलाह करनी चाहो ये गौर कर लो कि अगर ये हालत हमारी औलाद की होती तो हम क्या बर्ताव इसके साथ करते। बस जो बर्ताव उसके साथ तबीयत तजवीज़ करे वही बर्ताव इस गैर के साथ में भी करो। और मैं इस हदीस के कि अलमुस्लिम मिरातुल मुस्लिम यही माना बयान किया करता हूँ, यानी जिस तरह आईने का खासा है कि वो तुम्हारे अयूब चेहरे को तुमसे छुपाता नहीं और दूसरों पर जाहिर नहीं करता, इसी तरह मुसलमान को भी होना चाहिए कि किसी मुसलमान के अयूब को उससे छुपाए नहीं और दूसरों पर जाहिर ना करे, क्योंकि आईना जो है ना तुम्हारे आयब दूसरे को थोड़ी बताता है। नीज़ ये कि किसी मुसलमान की तरफ से दिल में कीना न रखना चाहिए, बल्कि आईने की तरह बिल्कुल साफ बातिन रहना चाहिए। किसी ने खूब कहा है, कुफरस्त दर तरीक़ते मा कीना दाश्तन, आईना मास्त सीना चू आईना दाश्तन, आईने मास्त सीना चू आईना दाश्तन। कुफ्र है तरीक़त में, तसव्वुफ़ में ये बात कुफ्र है कि किसी से कीना रखे, और हमारा कानून ये है कि सीना आईने की तरह रखे, सीना आईना दोनों में जोड़े। یہ شعر اس مقام پر بہت زیادہ چسپاں تو نہیں، لیکن لفظ آئینہ کی مناسبت سے پڑھ دیا گیا کہ آئینے کی شان صفائی ہوتی ہے، اور اوپر جو وجہ شبہ بیان کی گئی وہ بھی صفائی کی فرد ہے. حاصل یہ کہ جب کسی کے عیوب پر مطلع ہو تو اس کو اطلاع کر دو، اور اگر یہ کارگر نہ ہو تو خدا تعالیٰ سے دعا کرو. اور دوسرے کی عیب جوئی و عیب گوئی ان مسالے سے تو جائز ہے، اور اگر یہ مصلحتیں نہ ہوں تو باستثنا ایک موقع کے بالکل حرام ہے، اور وہ موقع یہ ہے کہ مظلوم شخص ظالم کی عیب گوئی کرے، یہ جائز ہے، کیونکہ مظلوم کو ظالم پر غصہ آتا ہے اور وہ غصہ حق ہوتا ہے، پر شریعت نے مظلوم کو اجازت دے دی ہے کہ وہ اپنے غصے کو نکال لے. سبحان اللہ، شریعت اسلام کی تعلیم بھی عجیب پاکیزہ تعلیم ہے کہ کسی ایک قابل رعایت پہلو کو بھی نہیں چھوڑا. مجھے تو اسلام کی تعلیم دیکھ دیکھ کر یہ شعر یاد آتا ہے، ظفر قدم ہر کجا کے پن می نگرم، کرشمہ دامن دل می کشت کے جائیں جاس. سر کے بالوں کی مانگ سے لے کے پیروں پر، جس جسم کے جس حصے پر بھی نظر ڈالتا ہوں تو دل یہ کہتا ہے کہ یہ سب سے زیادہ اچھی جگہ ہے، چاہے سر بالوں کو دیکھو، اس کی مانگ کو دیکھو یا پیر کو دیکھو، مطلب پورا کا پورا سراپا جو ہے نا وہ حسین ہے، یہ بولنا چاہتا ہے. ایسے ہی اسلام کا معاملہ ہے. دیکھیے، مظلوم چونکہ اپنے جائز غصے کو نکالتا ہے، اور یہ طبعی امر ہے کہ اس کے ضبط سے کلفت ہوتی ہے، اس کو برداشت کرنے سے کلفت ہوتی ہے، اس کو اجازت دے دی گئی. نہیں، اس میں یہ بھی مصلحت ہے کہ جب اس مظلوم کی غیبت سے لوگوں کو ظالم کے ظلم کی حالت معلوم ہوگی تو اپنے بچانے کی فکر کر لیں گے. بلکہ بعض بزرگوں نے ایک مضمر مصلحت سے یہاں تک کہہ دیا ہے کہ مظلوم کو چاہیے کہ اگر اس کو باطنی قرائن سے معلوم ہو جائے کہ میرے صبر کرنے سے ظالم پر ضرور قہر نازل ہوگا، کیونکہ بعض شخص کا معاملہ اللہ تعالیٰ کے ساتھ خاص ہوتا ہے، تو اپنی زبان سے کچھ تھوڑا ضرور ظالم کو کہہ لیا کرے، کیونکہ اس کی خاموشی سے اندیشہ ہے کہ خدا تعالیٰ کا غضب دنیا ہی میں ظالم پر ٹوٹ جائے گا. اور بعض بزرگوں کے کلام سے جو نہ کہنے کی فضیلت معلوم ہوتی ہے وہ اس بنا پر ہے کہ صبر ایک نیک عمل ہے، اس کے کرنے سے مظلوم کو زیادہ ثواب ملے گا. لیکن جنہوں نے کچھ کہنے کی اجازت دی اور اس کو افضل بتلایا، انہوں نے یہ خیال کیا کہ مسلمان بندے کو دوزخ کا عذاب نہ ہو اور خدا تعالیٰ کے قہر سے محفوظ رہے. ایک بزرگ کا واقعہ ہے کہ وہ چلے جا رہے تھے، ایک شخص نے ان کو بےہودہ کہا. ان بزرگ نے اپنے ایک مرید کو حکم دیا کہ اس کے ایک ڈھول مار. وہ متعمل ہوا، وہ آگے پیچھے ہوا، وہ شخص زمین پر گرا مر گیا. وہ جو جس نے کہا تھا بزرگ کو برا، وہ فوراً مر گیا. انہوں نے اپنے مرید سے کہا کہ تم نے دیر کی اور اس کا نتیجہ دیکھ لیا، میں تو یہ مصیبت سے بچانا چاہ رہا تھا. اور فرمایا کہ جب اس نے مجھے برا بھلا کہا تو میں نے دیکھا کہ قہر خداوندی اس پر نازل ہوا چاہتا ہے، یعنی اترتا ہوا دیکھ لیا، اس لیے میں نے چاہا تھا کہ میں خود ہی اس کو کچھ کہہ لوں تاکہ قہر خداوندی اس پر نہ پڑے، لیکن تم نے دیر کی، آخر یہ شخص ہلاک ہو گیا. اور یہی راز ہے کہ جب حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے دہنے مبارک میں کڑوی دوا ڈالی گئی، آپ کو دوا پلائی گئی تو کڑوی دوا پلائی گئی، اور آپ کے منع فرمانے پر لوگوں نے نہیں مانا، تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ہوش آ جانے کے بعد فرمایا کہ جن لوگوں نے میرے منہ میں دوا ڈالی ہے ان سب کے منہ میں دوا ڈالی جائے، وہ کڑوا، سب کو کڑوا، سب کے منہ میں کڑوی دوا ڈالو، سوائے عباس کے. یہ بھی حضور کہ وہ شریک رائے نہ تھے، ان کی رائے نہیں تھی یہ دوا پلانے کی حضور کو. کیوں؟ تاکہ مکافات ہو جائے اور یہ لوگ قہر خداوندی میں مبتلا نہ ہوں. حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو اگر تکلیف ہو گئی تو عقلی نہیں، جسمانی بھی تکلیف ہوئی تو اپنوں سے ہوئی نا، وہ قابل معافی نہیں تھی، دشمنوں سے ہوئی تو قابل معافی رہتی ہے، اپنوں سے نہیں ہوتی، اپنوں سے موقع زیادہ ہوتا ہے. یہ بہت کچھ چیزیں سمجھنے کی ہوتی ہیں. حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر اجڑی بھی ڈالی گئی، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے دندان مبارک بھی شہید ہوئے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم پہ جناب والا گھسیٹا بھی گیا، آپ کو جناب تھوکا بھی گیا، گالی بھی، کچھ بھی نہیں بول رہے ہیں اللہ میں، خاموشی سے نا بھائی، तारीफ में ज़्यादा से ज़्यादा ये फरमाया था कि अगर आप बोले तो हम पिटवा देते इनको, मगर पिटवाया नहीं, बगैर आपको पिटवाना ही था तो पूछे कहीं को, तो वो भी मसला था वहाँ पे, समझ रहे ना। तो ये है कि चूँकि ये मुखालिफिन थे तो इनको नहीं था मामला इनके साथ, लेकिन अपनों के साथ मामला ये था कि हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ आप ज़ोर से भी बोलेंगे तो तुम्हारे सारे गुनाह हफ्त हो जाएंगे, तुम कमरे के बाहर से आवाज़ देंगे तो तुम्हें छोड़ा नहीं जाएगा। बेवकूफ़ है वो जो कि बाहर से आवाज़ देता है, जो यूँ कहना चाहता है कि या मोहम्मद आइए मैं मिलना चाह रहा हूँ आपसे, इन यूनादून का मराइल हजरात अक्सर लायाकिल, जो कमरे के बाहर से आपको पुकारते हैं वो बेअक़ल हैं। वलुअन्नहुम सबरू हत्ता तखरुज इलैहिम, सब्र करो यहाँ तक कि वो खुद निकलें फिर आप मुलाकात करो उनसे, ये सिखाया गया। तो हुकूक जो थे वो मानने वालों के साथ थे। तो हुजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को दूसरों से इतनी तकलीफ़ थी, लेकिन खुद सब सहाबा ने दवा पिलाई हुजूर को, आपको तकलीफ़ पहुंची कड़वी दवा होने की वजह से, तो हुजूर ने होश आने के बाद फरमाया जितनों ने पिलाई थी सबको पिलाओ, सबको पिलवाई। हज़रत मिर्ज़ा मज़हर जाने जाना अक्सर लोगों को अपने पास आने की इजाज़त न देते थे। किसी ने उसका सबब पूछा तो फरमाया कि लोगों की अक्सर हरकतों से मुझे तकलीफ़ होती है और मेरी तकलीफ़ की वजह से लोग वबाल में मुब्तला हो जाते हैं, वो छोड़ते नहीं हैं उनको, जो मुझे तकलीफ़ देते हैं उनको वो नहीं छोड़ते हैं, इसलिए मैं खुद ही कहता हूँ कि भाई तुम्हें आने की ज़रूरत ही नहीं। और मैंने हर चंद खुदा तआला से ये दुआ की कि मेरी वजह से लोगों को तकलीफ़ ना दी जाए, लेकिन मेरी दुआ ये कबूल नहीं की जाती। जी हेज को मेरा खुदा रुसवा न कर ता वली साहिब दिले नामत बदर। अल्लाह तबारक व तआला जब तक किसी वली को तकलीफ़ न दी जाए उस कौम को कभी रुसवा नहीं करते। जो कौम किसी वली को तकलीफ़ पहुंचाएगी उस कौम को खुदा रुसवा करता है। ये वहाँ तो चूंकि बाज़ के माफ़ करने से भी पूरा माफ़ नहीं होता, इसलिए वहाँ कुछ कह लेना ही मसलहत है। क़र्ज़ मज़लूम को इजहार जुल्म की बदौलत किसी मसलहत के भी बिदों किसी मसलहत के भी इजाज़त है, अगर वबाल के टल जाने या हल्का हो जाने की नीयत हो तो मुस्तहसन है, लेकिन गैर मज़लूम को मसलहत साबिका के बग़ैर इजाज़त न होगी। अब मैं अपने बयान को बकिया आयत का तर्जुमा करके ख़त्म करता हूँ। फरमाते हैं वांतुम ततलूनल किताब, यानी बावजूद ये कि तुम किताब अल्लाह को पढ़ते हो और उसकी अहकाम तुमको मालूम हैं, शायद बाद लोग इस तर्जुमे को सुनकर खुश हों कि ये तमाम किताब तो उन लोगों के लिए है जो कि किताब को पढ़ते हैं, हम चूँकि पढ़े हुए नहीं हैं इसलिए हम मुखातब नहीं हैं, लेकिन ये खुशी सही नहीं है क्योंकि आगे ये भी इरशाद अफला ताकिलून, क्या तुम समझते नहीं, जिससे मालूम हुआ कि यह मसला जिस तरह नकली है अकली भी है, यानी अकल भी इसके बुरा होने का फतवा देती है। बहरहाल इस आयत से बदलालत मुताबिकी इस पर वईद हुई कि औरों को समझाओ और ख़ुद अमल ना करो, और बदलालत इल्तिजामी और बदलालत नस ये साबित हुआ कि औरों की बुराई के दर पे होना और अपनी बुराइयों को फरामोश करना बुरा है। ज़रूरत इसकी है कि हर वक्त अपने गुनाहों और अयूब पर नज़र हो और इसके मुआलजे की फ़िक्र की जाए, और जिसमें अपनी फ़िक्र काफ़ी ना हो उसमें दूसरे माहिर से रुजू करो। शर्म हिजाब की वजह से अपने अमराज को मुआलिज से छुपाया ना जाए, क्योंकि इजहार मरज़ के बगैर इलाज नहीं होता। ये बयान ख़त्म हुआ, चूँकि इस मरज़ में अक्सर लोग मुब्तला थे इसलिए उसका बयान करना ज़रूरी समझा गया। अमराज़ जिस्मानी में और अमराज़ रूहानी में एक बड़ा अजीब फ़र्क है। अमराज़ जिस्मानी जो हैं वो तकलीफ़ का सबब होते हैं, तकलीफ़ होती है उससे, चाहे तकलीफ़ होने वाला सबब हो, चाहे तकलीफ़ नहीं होने वाला मरज़ हो, मरज़ चाहे फ़ौरन दर्द होने वाला हो, चाहे दर्द नहीं होने वाला मरज़ है लेकिन मरज़ है, उसे ज़हनी तकलीफ़ होती है, ये बीमारी है। बल अमराज रूहानी की खसूसियत यह है कि अमराज रूहानी में मज़ा है, अमराज रूहानी सारे लज्जत पर है, उसमें किसी में भी जो है ना बदमजगी नहीं होती। अब किसी का ऐब बयान कर रहे हैं उसमें टेस्ट है, मज़ा आता है, अच्छा लगता है। किसी दूसरे का ऐब सुनाया जाए तो उसमें मज़ा आता है। मालूम क्या हुआ, बल्कि आते उधर से नहीं, क्या मेरे को तो नहीं मालूम क्या हुआ, ये हुआ कहते, तो सुनने वाले को भी मज़ा, सुनाने वाले को भी मज़ा, एक टेस्ट है उसमें। सारे अमराज की ये मुसीबत है, अमराज रूहानी की ये मुसीबत है, उसमें मज़ा है। ये कहाँ से मालूम हुआ, एक तो ये कि तजुर्बा है, मुशाहिदा है, फीलिंग विजदान है, और दूसरे हदीस से भी मालूम होता है। हदीस शरीफ में है कि हुफ्फतिन्नारु बिश्शहवात और हुफ्फतिल जन्नतु बिल मकारे, जहन्नम जो है वो शहवतों को घेरे हुए, शहवतों की बाढ़ से जहन्नम को घेरा गया है, ख्वाहिशात की बाढ़ से। आयब जो है ना ये जहन्नम में ले जाने वाले हैं ना आदमी को, जितने आयब होते हैं ये जहन्नम में ले जाने वाले हैं, और उसको और वो जहन्नम में ले जाने वाली जितनी चीज़ें हैं उनकी उनकी बाढ़ में क्या है, शहवत है, मज़ा है। तो अमराज रूहानी के इजाले में जो सुस्ती होती है वो उसके एक बड़ी वजह यह भी है कि वो तकलीफ़ का बायस नहीं है। अक़ल से आदमी को अपने ईमान से उसके अंदर तकलीफ़ महसूस करनी पड़ती है कि ये बीमारी है और इससे मुझे अल्लाह तबारक व तआला से दूरी होती है और इससे अल्लाह तबारक व तआला नाराज़ होते हैं, ये जन्नत से दूर करने वाली है, ये जहन्नम में पहुंचाने वाली है, ये मुझे बर्बाद करने वाली है, खुदा रसूल से दूर करने वाली है। वो एक अक़ली तौर पर आदमी को उसकी मजम्मत दिल में ला के उसकी बुराई का को पहचान के उससे बचने का काम करना पड़ता है। मसला है विजदान ये कहता है कि कभी आदमी को अपने ऐब नज़र ना आए अगर उसको देखने की आदत हो जाए तो, ये नहीं हो सकता। हज़रत अम्बिया अला नबीना वालसलाम तो खैर अलग है, पाकिदा नफूस है, मासूम नफूस है, उनसे गुफ्तगू नहीं है। औलिया अल्लाह में भी हो सकता है कि बाद ऐसे मरातिब के बुज़ुर्ग हों, लेकिन किस्सा असल में ये होता है कि आयब उन कमज़ोरियों का नाम है असल में, जिनसे अल्लाह तबारक व ताला से, जो अल्लाह ताला की दूरी का सबब बनते हैं। और अल्लाह तबारक व ताला से दूरी का सबब जो है ना, वो बंदे में हर वक्त रहता है। कब तक रहता है? जब तक बंदे में जिस्म है जब तक रहता है। क्योंकि बंदे में है आग, पानी, मिट्टी, हवा, और आग और पानी और मिट्टी हवा की जो खसूसियात हैं, असल उनका ही नाम ऐब है। और नफ्स के रज़ाइल बोलते उन्हीं खसूसियतों को असल में, यानी वही खसूसियतें नफ्स के रज़ाइल में कन्वर्ट होके ज़ाहिर होते हैं। इसलिए जब तक आदमी है उस वक़्त तक उसको अपने अंदर कमी कमज़ोरी दिखना ज़रूरी है। अब हिर्स है, जब तक आदमी के जिस्म के अंदर, जिस्म उसमें आदमी में पानी है, हिर्स महसूस होगी उसको, क्योंकि हिर्स असल में पानी की खसूसियत है। अब ये सही है कि तरबियत की वजह से वो हिर्स का रुख बुराई के बजाय नेकी की तरफ हो जाता है, दुनिया के बजाय आखिरत की तरफ हो जाता है, जन्नत बनाने की तरफ हो जाता है, आमाल हासिल करने की तरफ हो जाता है। साबिक बिल खैरात होना, है ना, साबिकु इला मग़फ़िरति मिन रब्बिक, आगे बढ़ना, वफी ज़ालिक तनाफुस करना, वफी ज़ालिक फ़लियतनाफस अल-मुतनाफिस, ये हिर्स में तो होता है और कह में होता है, यानी हिर्स की वजह से ही होता है। दूसरे से आगे बढ़ने की फिक्र आमाल में क्यों हो रही, उसका रुख सही हो गया है, महमूद अमल बन गया, वो अच्छी सिफत बन गई, लेकिन उसके पीछे मुहर्रिक वही थे, तो वो चीज़ तो है, मटेरियल तो है वो, तो मटेरियल होने की वजह से अपने आए हमेशा नज़र आते रहेंगे आदमी को, और रहना चाहिए, और अच्छी अलामत है नज़र आ रहे हैं तो उसको। मगर यहाँ एक सिर्फ थोड़ा सा उसको ज़रूरत है एक बात की, वही है कि अपने शेख की तालीम पर रहे, क्योंकि कहाँ जा, चीज़ तो उसको नज़र आ रही है लेकिन वो चीज़ अपना असर दिखा रही है नहीं दिखा रही, चीज़ का रुख बदला नहीं बदला, उसका हुक्म वो खुद ना लगाए, उसका शेख लगाएगा, वो चीज़ तो नज़र आएगी। आग नज़र आएगी, आग का असरात नज़र आएंगे, पानी नज़र आएगा, पानी के असरात नज़र आएंगे, मिट्टी नज़र आएगी, मिट्टी के असरात नज़र आएंगे, हवा नज़र आएगी, हवा के असरात नज़र आएंगे। ये गालिबन राज है कि हम अहलुल्ला को, बुजुर्गान दीन को देखते हैं कि बज़ाहिर बिल्कुल किसी गुनाह में नज़र नहीं आते कभी भी, मगर यह कि अपने को जो है ना, वो हर किस्म के आयब से अपने को मातूब करते रहते हैं। अब हज़रत शेखुल अज़ीज़ मौलाना ज़करिया साहब रहमतुल्लाह अलैह की किताब में आप देखेंगे कि ये कमीना, ये फलां, ये फलां लिखते नहीं, वही क्यों लिख रहे हो तुम अपने को कमीना, हो ही नहीं तुम ऐसे, तो हमको नहीं दिख रही, है भी नहीं उन्हों और हमें दिखते भी नहीं, लेकिन उनको जो चीज़ दिख रही है वो उस पर हुक्म लगा रहे हैं कि ये शरारत है यहाँ पे। अब उसका इस्तेमाल खैर की जगह पर हो रहा है, आग है, कोई रोटी पका ले रहा है उससे, समझ आ रहा नहीं, आग है उससे तकवे का पानी गर्म कर ले रहा है कोई आदमी, लेकिन आग तो है, तो आग है बल्कि उस पर हमेशा बदनीयती करना, बदगुमानी उस पर रखना कि आग है, किसी भी वक्त ये फूंक सकता है, जला सकता है बल्कि, ये अलग बात है कि उन्होंने अपनी हिकमत से उसको जलाने नहीं दे रहे बल्कि पका ले रहे, तखवा पका ले रहे उस पर, रोटी पका ले रहे उस पर, अमाल नेक पका ले रहे, नफ्स पे गुस्सा पका ले रहे उस पर, जो गुस्सा दूसरे पे असल है अपने ऊपर करने के लिए ना भाई, मगर हम तो अपने ऊपर ही नहीं करते, सब दूसरों पे ही करते हैं, गुस्सा दिया गया अपने ऊपर करने के लिए, हम अपने ऊपर नहीं करते उसको दूसरे पे करते हैं, अब वो जो वाकिफ हो गया वो अपने पे करता है, मगर है तो चीज़ वो पकाने की, वो वजह होती है जो अपने को वो लोग बुरा बोलते हैं क्योंकि वो उस जगह से देख रहे होते हैं। और जब किसी आदमी की नज़र में ये चीज़ बैठ जाए, आग उसकी खसूसियात, पानी और उसकी खसूसियात, हवा और उसकी खसूसियात, मिट्टी और उसकी खसूसियात, और वो रज़ाइल में कैसे कन्वर्ट होते हैं, थोड़ा सा इसका तारुफ हो ही जाता है बंदे को, ये खसूसियात रज़ाइल में कैसे बदलते हैं इंसान से, रज़ीले की शक्ल में कैसी ये खसूसियतें अमल बन के ज़ाहिर होती हैं, तो फिर ऐसे बंदे पर अपने आप को हकीर समझना और मामूली समझना भी रासिख हो जाता है। अपने को हकीर समझेगा, अपने को मामूली समझेगा, बेहैसियत समझेगा, इतना छोटा, इतना जलील, इतना कमीना कि दुनिया में कोई चीज़ इतनी जलील, इतनी कमीना नहीं होती, वो देखने वाली कैफियत आदमी में आती है अपने बारे में। सबसे दुनिया में छोटी चीज़ कौन सी है, मैं छू, सबसे जलील चीज़ कौन सी है, मैं हूँ, सबसे हकीर चीज़ कौन सी है, मैं हूँ, कोई दूसरा बोले तो बुरा लग सकता है, लेकिन फीलिंग और विज्ञान के एतबार से उसका वो होना ज़रूरी है। और ये राज है उस हदीस शरीफ के उस लफ्ज़ का, अल्लाहुम्मा जालनी फ़ी आईनी सगीरा, या अल्लाह मुझे मेरी आँख में छोटा कर दे, अल्लाहुम्मा जालनी फ़ी आईनी सगीरा, या अल्लाह मुझे मेरी आँख में छोटा कर दे, वफ़ी आयुनिन्नासी कबीरा, और लोगों की आँखों में बड़ा कर दे। जब इसका उल्टा हो जाता है तो तबाही आ गई कि आप अपनी आंख में तो आप बड़े हो गए और लोगों की आंखों में छोटे हो गए, लोग सब हकीर समझ रहे और ये अपने को समझ रहा कि हम चू मत दीगर नेस्त, हमारे जैसा कोई दूसरा ही नहीं। यहाँ आकर हदीस में जो बातें हैं, कुरान में जो बातें हैं, आप हर चीज़ के इस तह तक जाने के बाद वो बात अलग से समझ में, अलग अंदाज में समझ में आती है, वो आयत अलग अंदाज में समझ में आएगी जिसमें, वह हदीसें अलग अंदाज में समझ में आएंगी जिसमें इस तरह की बातें होती हैं। कुरान और हदीस की बात समझने की जगह है असल में, कहाँ से कौन सी बात सही पकड़ में आती है। हर जगह से उस बात को पकड़ने का, उसका मौतिन कहते हैं उसको, उसका वतन कौन सा है, वतन माने जगह, उस बात का वतन क्या, मौतिन क्या है, कहाँ से वो बात सही इद्राक होगी। जब मेरी उम्मत अमर बिलमारूफ और नहीं अनिल मुनकर छोड़ देगी तो वही की बरकत से महरूम हो जाएगी, एक हदीस शरीफ है ना, वही की बरकत से महरूम होने के मतलब में ये बात लिखी है कि वही का जो फहम है खास, वही का एक फहम है, उसका जो मौतिन है, जो जगह है जहां से खुलती है चीज, वो अमर बिन मारूफ ने दावत है, और एक दावत यह है आम दावत बयानात वगैरह के ज़रिए से जो होती है, वो तबलीग में फिर के जो होती है वो, ये भी आम ही है, एक ख़ास होती है, बहुत आगे की चीज़ होती है। असल तो वही की फहम वहाँ खुलती है सही, और इससे भी आगे। क्योंकि हम जिस चीज़ को हम अमर बिन मारूफ नहीं अनिल मुनकर कहते हैं, वो अमर बिन मारूफ नहीं अनिल मुनकर तो है नहीं, वो अर्ज़ो दावत है, दावत पेश करना है। अमर बिन मारूफ नहीं अनिल मुनकर तो अमर, तो अमर है, ऑर्डर को बोलते हैं, नहीं नहीं ऑर्डर को बोलते हैं, करता ये काम नहीं दूँ एक भेरी, इसको बोलते हैं अमर, कर लो ना चलो ना नमाज को, इसको अमर थोड़ी बोलते हैं, अमर थोड़ी ही है, तो अर्ज है, अर्ज बने पेश करना, अर्ज दावा है। मैंने माना इनामुल हसन साहब रहमतुल्लाह अलैह से सुनी है ये बात, असल में इसलिए बहुत जुरत से बोलता हूँ ऐसी बातें मैं, क्योंकि मैं बड़ों से सुना हुआ हूँ, उनसे मैंने सुना, फरमाते थे कि हम लोग अमर बिन मारूफ नहीं मिलकर काम करते हैं, हम तो अर्ज़ दावा करते हैं, ये फरमाया था एक मरतबा। तो जब मेरा जहन गया था कि क्यों नहीं करते हम अमर बिन, वजह उसकी है कि अमर, अमर में अमर पाया जाता है, हुक्म है, आप हुक्म देने के मौक़ में होना, तो जाहिर है कि वो एक दूसरा मैदान है, वो लड़ाई भिड़ाई की जगह है। वही की जो फहम है ना असली, वो खुलने की जगह वो है सर, दुनिया की बेसबाती, इंसानी ज़िंदगी की बेसबाती, इंसान का जो है ना सही माना में सब्र, सही माना में यकीन, सही माना में अल्लाह पे नज़र, सही माना में तवक्कुल, सही माना में तौहीद, सही माना में इखलास, सही माना में इसार, सही माना में क़ुरबानी, सही माना का जिक्र, सही माना की जितनी सही जिन जिन जो जो बातें हम कुरान हदीस की बोलते हैं ना, उसके जो सही माना है वो खुलने की जगह है एक। और ये इस पर मुझे याद आ गया कि हर बात का एक मौतिन होता है, एक 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 वतन है जहाँ से वो चीज़ का ताल्लुक है। तो ऐसे ये जो है ऐसी बातें जो जैसे अब अल्लाह मजाल फ़ी आयनी सगीरा क्यों आई जहन में, मतलब इस वजह से आई थी कि वो असल में समझने की जगह वहाँ है कि जब आदमी पर हकीकत मुनकशिफ़ होगी तो हकीकत के मुनकशिफ़ होने के साथ आदमी को अपनी ज़ात का हकीर होना उस पर खुलेगा, बेहैसियत होना उस पर खुल जाएगा। जब बेहैसियत होना खुलेगा तो किब्र उसमें से निकल जाएगा, बड़ापन नहीं रहेगा। और जिस आदमी में से किब्र निकल जाए उस आदमी में अब्दियत आना ज़रूरी है, बल्कि हकीकत तवाज़ो और हकीकत अब्दियत वहीं से शुरू होती है, उसकी अलिफ वहीं से है। और अब्दियत जो है ना वो सरेंडिंग को बताती है, अपने दुम दबी भी, कोई बड़ापन, बड़े लफ्ज, बड़े बोल, दावा, तज़किया, अपने मुत्तकी परहेज़गार होने का एहसास, फीलिंग, बोलना, ये सब चीज़ों से आदमी दूर हो जाता है। तो इसलिए सूफिया किराम जो है वो आदमी में सबसे पहले सबसे ज़्यादा फनाइयत पैदा करते हैं, फनाइयत अपने हेच मदानी ना दानिस्तन के एतबार से कोई दावा रहे कि मेरे को आता है मैं जानता हूँ, और ना करने के एतबार से कोई दावा रहे कि मैं कर सकता हूँ, मैं नेक हूँ, मैं मुत्तकी हूँ। और ये फनाइयत जो है इसकी हकीकत जब पैदा होती है सूफिया के पास जब ये फनायत फनाए इरादा पर असर अंदाज हो, अपने इरादे पर, अपने इरादे के फनायत पर असर अंदाज हो, यानी अपनी मर्जी को ख़त्म करना। फना इरादा का मतलब होता है अपनी मर्जी से कोई काम करने को ख़त्म करना, मर्जी में। सूफी साहब रहमतुल्लाह अलैह फरमाया करते थे कि अपनी मर्ज़ी को ख़त्म करने की मशक अपने तमाम आमाल में करनी होती है, सूफी साहब की नसीहतों में से। क्या मतलब? ये फरमाया करते थे कि खाना खाने के लिए दस्तखान पर बैठो तो क्या चाह रहा है? तुम खाना चाह रहा हूँ। नहीं, तुझे खाने की इजाज़त नहीं, तू नहीं खा सकता। फिर क्या करूँ मैं? तो खा, अल्लाह के हुक्म से खा, क्योंकि अल्लाह ताला चाहते हैं कि मैं खाऊं, अल्लाह ताला फरमा रहे हैं खाओ, इसलिए खाता हूं, अपनी मर्जी से नहीं खाता, अल्लाह के खाने के अमर की वजह से खा रहा हूं। पानी पीते हो, चाय पीते हो, तो पीने से पहले नफ़ी करो अपने अमल की, मैं पीने की नफ़ी कर रहा हूं, मैं नहीं पीता। फिर क्या करूँ? प्यासा रह जाऊँ? नहीं, पी, अल्लाह के हुक्म से पी, अल्लाह का हुक्म है इसलिए पीता हूँ, अल्लाह का हुक्म है इसलिए खाता हूँ, अल्लाह का हुक्म है इसलिए सोता हूँ, अल्लाह का हुक्म है इसलिए पहनता हूँ, अल्लाह का हुक्म है इसलिए जाप के जाता हूँ, अल्लाह का हुक्म है इसलिए दवा खाता हूँ। फरमाया करते थे हज़रत सूफ़ी साहब रहमतुल्लाह अलैह कि अपने तमाम आमाल में अपनी नफ़ी की मशक करना होता है ताकि फ़नाए इरादा वाली कैफियत आए, अपनी मर्ज़ी से ना करने वाली कैफियत आदमी में आए। क्योंकि इंसान का इस दुनिया में जो इम्तहान है वो ये है कि अपनी मर्ज़ी रखते हुए अपनी मर्ज़ी को ख़त्म करके अल्लाह की मर्ज़ी को अपने ऊपर लागू करने का नाम अपनी फनाइयत है। मशक असल में उसकी है, क्योंकि जिसको अपनी मर्ज़ी रखने के बावजूद अपनी मर्ज़ी ख़त्म करने की मशक हो चुकी होगी, उस आदमी को जन्नत में उसकी मर्ज़ी के हवाले किया जाएगा। अब ये जन्नत में रखने के काबिल है, चूँकि इसको अपनी मर्ज़ी इस्तेमाल करने की आदत नहीं है, उसको हमारी मर्ज़ी इस्तेमाल करने की आदत है। तो मैं खलीफा बना के छोड़ देते, तू मेरा नुमाइंदा है, वले कुम्फिया मातशतही अनफुसुकुम वले कुम्फिया मात दो, जो तुम बोलोगे वो हो जाएगा। क्यों? इस वास्ते कि अब तुम्हारा बोलना हमारा ही बोलना है, यूँ है असल में, क्योंकि अब तुम्हारी मर्ज़ी तो रही नहीं, तुम्हारी आदत ही नहीं रही अपनी मर्ज़ी लगाने की। जन्नत जन्नत ये दुनिया जन्नतियों के सिलेक्शन की जगह है, ये दुनिया जन्नतियों के सिलेक्शन की जगह है, क्योंकि हर कोई ऐसा होगा तो वो जन्नत जन्नत रहेगी। एक भी दूसरा आ गया तो अपने लिए भी जहन्नम बनाएगा, दूसरों के लिए भी उसको जहन्नम बनाएगा। आप अकेले अच्छे रहने से क्या होता है? सब अच्छे रहे तो आप मज़े में रहते हैं, आप अकेले अच्छी ड्राइविंग कर रहे हैं तो क्या फ़ायदा है? दूसरे अच्छी कर रहे हैं तो भी आप अच्छी कर सकते हैं, आप मज़े में जाते हैं। तो फनाए इरादा फनाए मर्जी की मशक सूफिया के पास होती है। हज़रत सैयद साहब हज़रत सैयद सुलेमान नदवी रहमतुल्लाह अलैह हज़रत थानवी के पास गए, तो हज़रत थानवी से बैत होने के बाद में नसीहत चाही, तो हज़रत थानवी से पूछा कि हज़रत कुछ नसीहत फरमाइए। तो फरमाया कि भाई एक बात जहन में रख लो कि यह रास्ता फनाइत का है, यह रास्ता फनाइत का है, और सूफिया के दर्स में ये बात है, फरमाते हैं कि इसकी इब्तिदा भी फनाइत है, इसकी इंतहा भी फनाइत है, इसमें फनाइत ही सीखने का होता है। कुछ नहीं, आजिज़ी सीख लेना इसी में, तवाज़ो सीख लेना इसी में, छोटा बनना सीख लेना इसी में, छोटे बोल की आदत रहना, दावा नहीं आना मुंह पे, इस बात नहीं आना अपना, मैं ये करा मैं वो करा मैं ये कर सकता मैं वो कर सकता मेरे को पता है, ये सब चीज़ों से हटके रहता है सूफी का जहन, सूफी का मिजाज, उसकी मशक करनी है हम सबको। यहाँ जाके फिर तज़किया और यहाँ जाके तहजीब अखलाक अखलाक दुरुस्त होने वाली बात आती है। जो अच्छी चीज़ें आदमी के दिल में आदमी को अल्लाह पाक अता फरमाते हैं अमानत के तौर पर, उनके नेमत होने का इजहार करना भी बुरा नहीं है और करना भी पड़ता है। अपनी नफ़ी का मतलब ये नहीं होता कि अब आपसे कोई पूछ रहा कि आप हाफिज हैं क्या, नहीं 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 मैं काम है तो कुछ भी नहीं। आप इंजीनियर हैं, नहीं 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 मैं काम है तो कुछ भी नहीं। आप डॉक्टर हैं, नहीं 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 मैंने तो कहा मैं तो कुछ भी नहीं, तो हो गया। कोई आदमी आपसे घर का नक्शा नहीं बनाएगा, कोई आदमी इलाज नहीं करवाएगा, कोई आपसे तरावी नहीं पढ़वाएगा। जिन कमालात को अपने यहाँ पाता है आदमी, उसमें इसका शऊर रहे कि ये अल्लाह तबारक व तआला की आता है, मेरा अपना ज़ाती कोई कमाल नहीं है, वो एक 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 आन में वो रख भी सकते हैं, एक आन में वो निकाल भी सकते हैं, ऐसा है। तो उसके 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 इंतसाब के वक़्त में अपनी हैसियत को नहीं भूलते हुए अल्लाह ताला के इनाम को याद रखना और अल्लाह ताला के इनाम का इजहार भी कर देना ज़रूरत पड़ने पर, वो बैलेंस लाना होता है बाज़ जगहों पर, बाज़ मौक़ों पर। अपनी फनाइयत अलग चीज़ होती है। दावे की नफ़ी के साथ तकल्लुफ़ नहीं रहता, दावे की नफ़ी के साथ तकल्लुफ़ नहीं रहता का मतलब यह कि आप बतकल्लुफ़ तरीके पर अपने को शो नहीं कर सकते कि मैं बहुत बड़ा काबिल हूँ। जिसको शो करने की आदत होती है उन्हें मुत्तहम रहता, उसको उसकी तौजीह मुश्किल होती है कि इसकी तौजीह कैसा करना है, इसके बारे में हुस्न ज़न कैसा कायम करना, परेशानी में आ जाता बंदा। भाई एक आदमी को अपने फीलिंग में यह है कि उन्हें कुछ भी नहीं है, उसकी कोई हैसियत नहीं है, वो सादा क्यों नहीं रहता, उसके पहनने में सादगी क्यों नहीं है, उसके उठने बैठने में सादगी क्यों नहीं है, उसकी बातचीत में सादगी क्यों नहीं है, उसकी मुलाकात में सादगी क्यों नहीं है। क्योंकि यही वजह है कि सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के नशिस्त बर्खास्त में, पहनने रहने में, खाने में पीने में, हमारा मिन मुतकल्लिफिन, मैं तकल्लुफ़ वाला नहीं हूँ, किसी भी किस्म का तकल्लुफ़ आपसे ज़ाहिर नहीं होता था। ये वजह है कि इस ज़माने में खसूसियत के साथ हमारे अकाबिर ने जुब्बा और दस्तार से एहतियात की, बड़े बड़े अमामे, बड़े बड़े जुब्बे ये छोड़ दिए। पहले जो है ना, उनको इख्तियार इस वजह से नहीं किया गया था कि उनको शो करना था, बल्कि आदत थी, वो एक आदत थी और सभी लोग इख्तियार किए हुए थे उस चीज़ को, तो वो कोई शो की चीज़ नहीं थी उन लोगों के लिए। बाद में जो है ना, बहुत कम लोगों में रह गई, वो तो शो की चीज़ हो गई कि जो जितना बड़ा मौलाना है उतनी बड़ी उसकी उसकी पगड़ी, उतना उतना बड़ा जुब्बा, उसके गले में उतनी बड़ी तावीज, जो जितना बड़ा शेख है पीरे तरीक़त है उतनी इतने गले में बड़ी तस्बीह। एक हमारे पास बिदती पीर था, वो एक मरतबा हमारे पे दारुल हैदराबाद की इमारत की इफ्तिताह में आ गया, मतलब बुला लिया उसको, हमारे मदरसे वाले ज़रा पॉलिसी वाले थे थोड़ा, सबको खुश रखने की पॉलिसी में, उसको भी बुला लिया। अब ऐसी बड़ी तस्बीह उसके जेब में यहाँ से आता है, पूरी नाफ के नीचे तक लटक गया, ऐसे मोटे मोटे दानों की। उससे एक साहब पूछ लिया कि आप ये गले में तावीज़ ये तस्बीह डाल के क्यों रखे हुए, तो कहने का इसलिए रखे हुए ताकि आप पूछें कि ये क्यों रखे हुए। उनकी बात है, जिस आदमी के पास में फनाइयत होगी उसको इन चीज़ों का वो एहतमाम नहीं कर पाएगा, उसका उसके बस की चीज़ नहीं है एहतमाम का। नंबर एक, नंबर दो, जिस आदमी में कमाल होगा उसको बनने की ज़रूरत नहीं, साहिब कमाल बना नहीं करता। जो साहिब कमाल नहीं होते हैं वो बनते हैं, क्योंकि उनको उनके पास कमाल तो है नहीं, उनको बन के थोड़ा सा लोगों में बनना है, साहिब कमाल को बनना नहीं पड़ता। जो बड़े बड़े नोबल इनाम याफ्ता, बड़े फलासफी, बड़े प्रोफेसर, वो लोगों को आप देखेंगे कि ना उनके पहनने में कोई ढंग, ना उनके बालों का कोई ढंग, ना उनके रहने सहने का कोई ढंग। उनके कमरे में चले जाएं आप, उनके सामान में देखेंगे भाई क्या भड़बुंजा किस्म का है, क्योंकि उसको कोई फिक्र ही नहीं है, क्योंकि वो इतना साहिब कमाल है कि सारी दुनिया उसके पीछे रहेगी। फिर भी साहिब कमाल मुस्तगनी हो जाता है बनने से। हज़रत थानवी रहमतुल्लाह अलैह फरमाया करते थे कि जो तालिबे इल्म बनता है मैं समझ जाता हूँ कि खाली डब्बा है, देख रहे हैं कपड़े कड़क हैं कि नहीं है, इस्त्री बराबर है कि नहीं है, टोपी सही है कि नहीं है, गिलास साफ है कि नहीं है। बाद लोगों को आदत रहती है ना, ये कंघी करें, ये उधर उधर इधर करेंगे, इसका मतलब ये है कि अंदर इसके कुछ भी नहीं है। अगर अंदर हो तो ये बाहर इसको बताने की क्या ज़रूरत है। तो फनाइत की दूसरी खसूसियत ये होती है कि वो जो है उसमें कमालात आना शुरू हो जाते हैं, तो फिर बनावट वैसे भी ख़त्म हो जाती है। फनाइत की असल बुनियाद में होता यह है कि फिर अल्लाह तबारक व तआला का फैज़ान उसकी तरफ मुतवज्जे बहुत होता है, क्योंकि उनकी आदत है कि ला की जगह पे वो इल्ला रखते हैं, ला इलाहा इल्लल्लाह, नफ़ी की जगह पर इस बात, जहाँ नफ़ी होती है वहाँ इस बात करते हैं, जहाँ नफ़ी होती है वहाँ इस बात करते हैं। तो अपने को जो आदमी छोटा करता गया, छोटा करता जाएगा, वो उसको बड़ा बनाते जाते हैं। मन तवादा लिल्लाह रफा होता। ये सूफिया किराम और औलिया अल्लाह जो है उन्होंने अपने को इतना मिटाया, इतना मिटाया, इतना मिटाया, इतना मिटाया कि अब वो तो वो उनकी ख़बरों को तक जो है ना लोग जो है ना मोहब्बत से अजमत से सजदा करने लगते हैं, इतना बढ़ा देते हैं। असल में विलायत की इंतहा जो है ना वो उसका बॉर्डर शिर्क से लगा हुआ है, बहुत इसमें सीक्रेट है, बहुत बड़ा एक राज है ये। विलायत जब बहुत आगे तक जाती है तो वो कहाँ तक जाती है? वो जाती है अल्लाह तबारक व तआला के क़ुर्ब तक। वो बंदा अल्लाह का बहुत ही करीब हो गया ना तो वो तौहीद से बॉर्डर मिल गया, नहीं मिल गया उसका, वहाँ जाके फिर वो फिर उसके साथ में वो चीज़ें जब जोड़ने लगते हैं जो तौहीद के साथ में जुड़नी चाहिए, वहाँ से तो शिर्क शुरू होता है, और कहाँ से शुरू होता है। तो इन लोगों ने अपने को इतना मिटाया कि फिर अल्लाह ताला ने लोगों के दिलों में उनकी अजमत और मोहब्बत ऐसे डाली कि वो उसमें बैलेंस नहीं रख पाए, उसमें आके पड़ गए, गड़बड़ में आ गए। दुआ करो अल्लाह पाक हम सबको अपनी दौलत क़ुर्ब से मालामाल फरमाए। अल्लाहुम्म सल्ली अला सय्यिदिना मौलाना मुहम्मदिन व अला आलि सय्यिदिना मौलाना मुहम्मद व बारिक वसल्लम। रब्बना ज़लमना अनफुसना व इल्लम तग़फिर लना व तरहमना लनकूनन्ना मिनल ख़ासिरीन। रब्बना ला तुज़िग़ क़ुलूबना बाद इज़ हदैतना व हब लना मिन लदुनका रहमतन इन्नका अंतल वहाब। اللهم إنك عفو كريم تحب العفو فاعف عنا يا كريم। اللهم آت نفوسنا تقواها وزكها أنت خير من زكاها أنت وليها ومولاها। اللهم جنبنا الفواحش ما ظهر منها وما بطن وبارك لنا في أسماعنا وأبصارنا وقلوبنا وأزواجنا وذرياتنا وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم وجعلنا شاكرين لنعمتك ومثنين بها قابليها وأتم علينا। اللهم إن قلوبنا ونواصينا وجوارحنا بيديك لم تملكنا منها شيئا فإذا فعلت ذلك بنا فكن أنت ولينا واهدنا إلى سواء السبيل। اللهم حبب إلينا الإيمان وزينه في قلوبنا وكره إلينا الكفر والفسوق والعصيان واجعلنا من الراشدين। اللهم أعنا على تلاوة القرآن وكثرة الذكر لك والشكر لك। اللهم أعنا على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك। ربنا هب لنا من ازواجنا وذرياتنا قرة اعين واجعلنا للمتقين اماما। ربنا اغفر لنا ولوالدينا ولاساتذتنا ولمشايخنا ولمن له حق علينا ولمن اوصانا بالدعاء। ربنا تقبل منا انك انت السميع العليم وتب علينا انك انت التواب الرحيم। وصلي وسلم وبارك على سيد المرسلين برحمتك يا ارحم الراحمين।